कार्तिका इस वक्त आहान के विला में आई हुई थी। अब तक कार्तिका बेफिक्र होकर अक्षरा के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब आज वो विला में आई और उसने आहान को गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को घसीटते हुए ले जाते देखा तो कार्तिका घबरा गई थी। आहान का गुस्सा भी तो ऐसा ही था। कार्तिका ने उन्हें बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाथरूम में गई। कार्तिका को इतना डर लग रहा था कि उसने अक्षरा को कॉल करने के बजाय मैसेज लिखा कि वो उसके लिए काम नहीं करने वाली है। वहीं कार्तिका का मैसेज देखकर अक्षरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तुरंत कार्तिका को कॉल किया और गुस्से में झल्लाते हुए कहा, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। उस 2 कौड़ी की नर्स की सैलरी से तुम ठीक से अपने भाई बहनों के लिए खाना तक अरेंज नहीं कर पाती हो। ऐसे में उनकी फीस और बाकी जरूरतों को मैंने पूरा किया है। उन्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। तुम्हारे लिए आगे भी बहुत कुछ करने वाली हूँ। तुम्हारे पास बैकआउट करने का ऑप्शन नहीं है कार्तिका। मुझे माफ़ कर दीजिए अक्षु दीदी, सच में नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से में हैवान बन जाता है। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट करने वाले गार्ड को उसने बहुत बुरी तरह से मारा और उसे घसीटते हुए बेसमेंट में बंद कर दिया था। मुझे पक्का यकीन है कि वो उसकी जान ले लेगा। उसने कहा था कि वो खुद को धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। मैंने आपका काम कर भी दिया तो मेरे और मेरे भाई बहनों की जान खतरे में आ जाएगी, कार्तिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बस कुछ दिनों की बात है। तुम्हारा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें कहीं और सेटल कर दूंगी, मेरा यकीन करो। चलो अब खुद को नॉर्मल करो और बाहर जाओ। किसी को शक हो गया तो काम वैसे भी बिगड़ सकता है, अक्षरा ने खुद को शांत करके जवाब दिया। कार्तिका आगे कुछ कह पाती उससे पहले अक्षरा ने कॉल कट कर दिया था। कार्तिका ने अपना मोबाइल साइड में रखा और आईने में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने बुरे दिन याद आ गए थे। लगभग 1 महीने पहले मकान किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था और ऐसे में उसने कुछ दिन पार्क में बिताए थे। जिस दिन आहान और चाहत का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त अक्षरा उन्हें देखने के लिए अस्पताल में आई थी और वहीं पर उसे कार्तिका दिखाई दी थी। ऐसा नहीं था कि अक्षरा अपने और कार्तिका के रिश्ते से अनजान थी। उसे पहले से ही उनके रिश्ते के बारे में पता था और उसका फायदा उठाते हुए अक्षरा ने कार्तिका को अपना मोहरा बनाया। पता नहीं वो मुझसे क्या करवाना चाहती है, इससे अच्छा हम सभी अनाथ आश्रम में रह लेते। अगर आहान और बिरॉय को इस बारे में पता चला तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, ऊपर से उन्हें तो हमारे परिवार के बारे में भी पता है, कार्तिका ने सुबकते हुए मन ही मन कहा। कार्तिका अक्षरा के बिछाए हुए जाल में फंस गई थी। शुरुआत में अक्षरा ने उसे सिर्फ आहान और चाहत के अपडेट देने के बारे में कहा था, लेकिन अब तो वो उससे कुछ और ही करवाना चाहती थी। अक्षरा के तेवर देखकर साफ था कि वो उससे कोई अच्छा काम तो करवाने वाली थी नहीं। ऐसे में कार्तिका को खुद की और अपने भाई बहनों की फिक्र सताने लगी। कार्तिका अपने ख्यालों में खोई हुई बाथरूम में खड़ी थी, तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। इसी के साथ कार्तिका हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आ गई। कार्तिका ने जल्दी से अपना मुंह धोया, तभी बाहर से आयुष की आवाज आई। तुम ठीक हो ना, पिछले 20 मिनट से बाथरूम में हो। हाँ बस ठीक हूँ, थोड़ा रेस्टलेस लग रहा था तो मुंह धोने लग गई, कार्तिका ने जवाब दिया। अगर थकान हो रही है तो आराम कर लो, सब मेरी ही गलती है। तुम हॉस्पिटल में ऑलरेडी कितना काम करती हो और मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ बुला लिया। चलो बाहर आओ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में रेस्ट कर लो, आयुष ने बाहर से काफी केयरिंग में कहा। भले ही कार्तिका अक्षरा के लिए काम कर रही हो, लेकिन आयुष उसे अच्छा लगने लगा था। वो उसकी बहुत केयर करता था, ऊपर से उसके भाई बहनों का भी ख्याल रखता था। आयुष को खुद की परवाह करते देखकर कार्तिका की पलकें भीग गईं। उसने अपने मन में कहा, मैं तुम्हारे प्यार और रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ आयुष। जब तुम्हें मेरे धोखे के बारे में पता चलेगा तब सबसे ज्यादा तुम ही मुझसे नफरत करोगे। कार्तिका ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके बाहर आ गई। रोने की वजह से उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आयुष ने कहा, क्या हुआ, कुछ सीरियस है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अपने भाई बहनों से कह रही थी कि मुझे आ जाने में देर हो जाएगी, कार्तिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। सब मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें भी यहाँ बुला लेना चाहिए, वे तीनों बहुत एंजॉय करते, ऊपर से तीनों छोटे भी हैं, आयुष ने अफसोस जताते हुए कहा। कोई बात नहीं, कीर्ति अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो दोनों भाइयों को संभाल लेती है, कार्तिका बोली। उसकी छोटी बहन कीर्ति लगभग 15 साल की थी जबकि 2 छोटे जुड़वां भाई लगभग 8 साल के थे। आयुष आगे कोई सवाल ना पूछे ये सोचकर कार्तिका ने कहा, चलो हम सबके साथ बाहर चलते हैं, मैं ठीक हूँ, शाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है और अरेंजमेंट काफ़ी बाकी हैं। आयुष ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वे दोनों वापस लिविंग एरिया में चले गए। वहीं आहान और चाहत अभी भी साथ में थे। आहान ने और चाहत से उसके दिल की बात पूछी थी कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है या डर की वजह से उसके साथ है। चाहत ने गहरी सांस ली और फिर आहान के गाल पर हाथ रखकर कहा, प्यार भी है और डर की। पहले प्यार पर डर हावी हो जाता था लेकिन अब डर पर प्यार हावी हो रहा है। मैं इस बात को भूल चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता किस तरह से शुरू हुआ था, तो आप भी भूल जाइए आहान, एक ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है जहाँ हम दोनों के प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आ चुकी है। प्लीज़ अपने इस गिल्ट से बाहर निकलिए। आहान की बातों से चाहत समझ गई थी कि उसे अभी तक इस बात का पछतावा है कि उनके रिश्ते की शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हुई थी। उसने गुस्से में आकर चाहत से काफ़ी बदसलूकी की थी। आहान ने उसकी बात पर हामी भरी और चाहत को अपने सीने से लगा लिया था। जो भी हो रहा था उससे आहान काफ़ी बेचैन था, वो तेज सांस ले रहा था। चाहत ने उसके पेट को सहलाते हुए कहा, बेबी का कोई नाम सोचा आपने? मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे का नाम आप रखें आहान। आहान जल्दी से चाहत से अलग हुआ और हल्का हैरानी जताते हुए पूछा,
क्या सच में? आई मीन डॉल इसे तुमने पैदा किया है, तो इस पर पहला हक तुम्हारा बनता है। मैं तो तुम्हारे प्रेगनेंसी पीरियड में तुम्हारा ख्याल तक नहीं रख पाया था। ओफ आहान, कहा ना जो बातें बीत गई हैं उन्हें जाने देते हैं। ठीक है, इसे मैंने पैदा किया है, लेकिन आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो आपका भी हक बनता है। चलिए हम मिलकर इसका नाम रखते हैं। आप मुझे कुछ अच्छे नाम सजेस्ट कीजिए, क्या पता मुझे आपका बताया हुआ नाम पसंद आ जाए। चाहत ने आहान के मूड को लाइट करने की कोशिश की। आहान ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, फिर हम इसका नाम धैर्य रखते हैं। ये मुझे तुम्हारी तरह बिल्कुल शांत नाम लग रहा है। ओके डन, फिर तो इसका नाम धैर्य ही रहेगा, चाहत ने खुश होकर कहा और फिर धैर्य को अपने गोद में उठा लिया। वो बच्चे के फोरहेड पर किस करके बोली, देखा तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना अच्छा नाम दिया है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें दुनिया के बेस्ट पापा मिलने वाले हैं, वरना मेरे पापा, चाहत बोलते हुए रुक गई। बीते कुछ सालों में चाहत राजवीर को पूरी तरह भूल चुकी थी, लेकिन अचानक उसके सामने आने पर उसकी कड़वी यादें फिर से ताजा हो गई थी। चाहत ने आहान की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, हमारा एक्सीडेंट उन्हीं ने करवाया है ना, वो हमें मारना चाहते हैं। नहीं, वो आपको नहीं, वो मुझे मारना चाहते हैं।
आहान चाहत के पास खिसका और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वो हम दोनों को मारना चाहते थे। अब जरूरी नहीं है ना डॉल कि कोई इंसान कुछ चाहे और उसे मिल जाए। यहाँ सबकी चाहत पूरी नहीं होती है, चिंता मत करो और मुझ पर यकीन रखो। मेरे दिमाग के साथ खेलने वाले को उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। चाहत आहान से अलग हुई और हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? क्या आपके साथ जो भी हुआ उसके पीछे वो जिम्मेदार हैं? हाँ, कुछ बचपन के जख्म हैं जो विजय ओबेरॉय और उसके प्यारे दोस्त राजवीर शर्मा ने मिलकर दिए थे। विजय ओबेरॉय को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है, तो उसका दोस्त कैसे पीछे रह सकता है? आहन ने सर्द आवाज में कहा। क्या किया था उन्होंने आहन? चाहत ने जल्दी से पूछा। आहन ने चाहत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के आगे कुछ विजुअल्स आने लगे जिसमें वो लगभग 7-8 साल का था। आहन एक ऐसे पिंजरे में बंद था जिसके आसपास काफी सारे कुत्ते थे और वे भौंक रहे थे। आहन ने अपने कान बंद कर रखे थे और वो वहां पूरी तरह तड़प रहा था। जैसे जैसे आहन को सब याद आ रहा था, गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगीं। वो तेज सांस ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आहन उस लम्हे को फिर से जी रहा हो। चाहत ने जल्दी से उसे सहलाया और कहा, अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो मत बताइए, मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आहन ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे साथ मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। तुम मेरा ही हिस्सा बन गई हो डॉल, और मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हें सब जानने का हक है और तुम्हें सब बताऊंगा भी। चाहत ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। चाहत आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले तनु वहां पर आई। उसने दरवाजा लॉक करते हुए कहा, भाई ऐसी भी क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों की? पिछले 2 घंटे से लगे हुए हो, सारी अरेंजमेंट हो गई हैं। चाहत तुम तैयार हो जाओ, और आहन तुम भी, हम सब भी रेडी होने के लिए जा रहे हैं, और तुम दोनों के पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। इतना कहकर तनु वहां से चली गई। चाहत अभी खुद का काम खुद से नहीं कर पाती थी, नर्स भी अब तक नहीं आई थी। उसने धीरे से कहा, आप कार्तिका को भेज दीजिए, वो कर देगी मेरा काम। आहन ने चाहत की तरफ देखा और कहा, और मेरे होते हुए कार्तिका तुम्हारा काम क्यों करेगी? कहा ना डॉल, हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है और तुम मेरा ही हिस्सा हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगा, बिल्कुल अपनी डॉल की तरह सजाऊंगा, कहकर आहन ने चाहत के फॉरहेड पर किस कर लिया। आहन चाहत के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। ओबेरॉय विला में जहां खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा इस वक्त गाड़ी में कहीं जाने के लिए निकल रही थी। इतने आगे आने के बाद मैं उस लड़की को अपना प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगी, मुझे खुद ही कुछ करना होगा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, अक्षरा गुस्से में खुद से बोली। वाकई अब वो आहन और चाहत को और वक्त नहीं देना चाहती थी।